साईराम, साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
जदुख विनाशक लिंगम सत्रण मामि सदा शिवलिंगम परम परमात्मकलिंगम तत्रणमा
साई राम। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिवरात्रि का अर्थ है जिस रात को आपने भगवान शंकर पे ध्यान लगाया हो, या यूं कहिए वो रात्रि जब आपको परमात्मा ईश्वर भगवान शंकर पे ध्यान लगाना चाहिए। कहते हैं चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की, जब चंद्रमा अमावस की ओर जा रहा होता है, चंद्रमा की केवल एक कला रह जाती है, उसको कहा जाता है शिवरात्रि, उस रात को कहा जाता है शिवरात्रि। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं कम होनी है, अर्थात हमारा मन जो है धीरे धीरे फोकस हो सकता है, एक चीज पर केंद्रित हो सकता है। वो कहा जाता है शिवरात्रि से अच्छा समय कोई और नहीं है। दूसरी बात समझिएगा, फिर महाशिवरात्रि क्या? शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन मास के चतुर्दशी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन जो रात्रि है उसे महाशिवरात्रि कहा गया। कहा जाता है उस समय कुछ ऐसी ऊर्जा धरती से निकलती है जो हमारे शरीर से होकर हमें ऊंचाई पर ले जा सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए, जब हम परमात्मा के ध्यान में सीधा होके पालती मार के चौकड़ी मार के लोटस पोजीशन में बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। कहते हैं रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही ऊर्जा अर्थात शक्ति ऊपर जाती है, हमारे सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। क्या कभी आपने ध्यान दिया, जितने पशु हैं पक्षी हैं सबकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, वर्टिकल नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। केवल एक मनुष्य है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। अगर वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, परमात्मा पे ध्यान लगाए, धरती से निकलती ऊर्जा उसकी रीढ़ की हड्डी से उसको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। ये भी कहा जाता है जब देवताओं ने सृष्टि की रचना करी तो आपस में ड्यूटीज बांट रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, भगवान विष्णु सृष्टि को संभालते हैं, रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और भगवान शंकर उसको समाप्त कर देते हैं। कहते हैं जब देवता अपनी ड्यूटी बांट रहे थे, भगवान शंकर को बोला गया भैया देखो आपको ये अकेला काम करना है, सृष्टि को समाप्त करना है। कहते हैं भगवान शंकर ने मना कर दिया कि गलत काम मेरे को दे रहे हो आप, अर्थात मनुष्य के जीवन को देखिए, आदमी पैदा हुआ कहते हैं ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, पालन पोषण हुआ विष्णु जी कर रहे हैं, और जो इंसान मृत्यु को प्राप्त होगा तब भगवान शंकर लेने आएंगे, ना मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर कहा गया भगवान शंकर से, भाई देखो ये काम जो है मारने का नहीं है, तारने का है। इसलिए कहा जाता है क्रिएशन का अर्थ है सृष्टि, सस्टेनिंग का अर्थ है स्थिति, और डिसोल्यूशन का अर्थ है लय हो जाना, लयम। भगवान शंकर इंसान को मुक्त कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, किसमें? अपने आप में। यह भी कहा जाता है कि इंसान के अंदर तीन गुण होते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक। अब ये तीन गुण आप तीन देवताओं को भी दे सकते हैं, ये कह सकते हैं तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के तीन गुण हैं। लेकिन इन तीनों गुणों का तात्पर्य केवल एक है कि तीनों गुणों से पार जाके गुणातीताया बनके इंसान परमात्मा में लीन हो जाए। अब विचार कीजिएगा, शिवरात्रि, जैसा कहा गया एक रात को बैठ के अगर हम भगवान शंकर पे ध्यान लगाएं तो, जब हम भगवान शंकर की बात करते हैं हमारे दिमाग में बात आती है भगवान शंकर का शिवलिंग, वो क्या चीज है। जिस प्रकार से ओम, जो आप ओम लिखते हैं, ओम जो है वो एक ध्वनि का चिन्ह है, प्रतीक है, सिंबल है, उसी प्रकार से लिंग जो है वो विजिबल सिंबल ऑफ गॉड है, जिसे आप देख सकते हैं। ओम को आप देख नहीं सकते, आप सुन सकते हैं, ध्वनि है, एक साउंड है। और लिंगम जो है वो परमात्मा का विजिबल सिंबल ऑफ गॉड है। ये भी कहा जाता है परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक लिंग के रूप में रहता है, जिसे बोलते हैं सूक्ष्म फॉर्म, सटल फॉर्म। अंग अर्थात हमारी बॉडी में एक संग है, अर्थात कॉन्टेक्ट विद आउटर है, इनर वर्ल्ड के साथ, बाहरी और आंतरिक संसार के साथ। और संग के भीतर रहता है जंगम, जो यहां से वहां मूव होता रहता है, हिलता रहता है, चलता रहता है। और जंगम को मूव करने वाली चीज, लाने वाली चीज, उसको मूवमेंट में लाने वाली चीज जो है वो लिंगम है, लिंगा। लिंग का अर्थ होता है जिसके अंदर सब कुछ लय हो जाए, मिल जाए, लियते मर्ज हो जाए। और गा का अर्थ है गमते, गम यते, माफ कीजिएगा, गम यते करता है जिसके भीतर। तो लिंगम इज द सिंबल ऑफ द यूनिवर्स इनटू विच ऑल पार्टिकल्स मर्ज। एक ब्रह्मांड का ये एक चिन्ह है जिसके अंदर सब कुछ लय हो जाता है, मिल जाता है, वो लिंगम हमारे भीतर है, जिसको हम आत्मा लिंग भी कहते हैं। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि आप केवल एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं, आप ये सोचिएगा आप अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग इज इंपॉर्टेंट। लिंग पे आप दूध चला रहे हैं, दही चला रहे हैं, शहद चला रहे हैं, बेलपत्र चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन वो जो बाहर के आपके रिचुअल हैं वो आपकी आंतरिक शुद्धि के लिए हैं, कि आपके आत्मा के आसपास जो धूल जमी हुई है वासनाओं की, उसको दूर करने का ये प्रोसेस है, ये तरीका है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि भगवान शंकर के स्वरूप पे ध्यान दीजिए जरा। भगवान शंकर बैठे हुए हैं, सर पे जटाएं, जटाओं से गंगा बह रही है, एक चंद्रमा वहां पर लटका हुआ है, ललाट पे चमक रहा है, एक त्रिशूल है, त्रिशूल पे डमरू बांधा हुआ है, गले में सांप है, कंठ नीला पड़ा हुआ है, एक कटोरा रखा हुआ है आगे, अपने शरीर पे विभूति मल रखी है। भगवान शंकर की प्रतिमा को, मूर्ति को देखें, उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो उनके जटाओं से गंगा बह रही है उसका मतलब है लाइफ फोर्स। गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा को स्वर से भगीरथ ऋषि लेकर आए थे, भगवान शंकर ने उसके फोर्स को, पानी के फोर्स को अपने सर पे लिया, उसके बाद धरती पर उतारा। और बिना जल के आप नहीं जी सकते, जीवन नहीं है बिना जल के, इसलिए कहा जाता है लाइफ फोर्स। उनके जटा में चंद्रमा है। अब चंद्रमा को आप क्या बोलना चाहेंगे? चंद्रमा का अर्थ है वो चेतना का प्रतीक है, कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन बींग, जो हमारे चेतन तत्व है। चंद्रमा का दूसरा अर्थ भी है कि आप अपनी चेतना को सदैव याद रखें, अपना फोकस, अपना ध्यान अपनी चेतना पर लगाएं, अपनी कॉन्शियसनेस को आप और बढ़ाएं। कई लोग ये भी कहते हैं अगर आपको किसी के अंदर कोई अच्छाई नजर आ जाती है तो उसको आप अपने ललाट पे धारण कर लें, सबको बताएं उसके अंदर क्या अच्छाई है, उसको आप एब्जॉर्ब कर लें, आप भी उस पर चलने का प्रयास करें। हाँ, ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर ने सागर मंथन के समय जब सागर में से हालाहाल विष निकला था, सारे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई थी, इतना विषैला विष था वो, तो देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान शंकर ने उस विष को अपने गंठ में धारण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने विष को पिया नहीं, कंठ में धारण कर लिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप ये सोचिए, आपको किसी के अंदर कोई बुराई नजर आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी अपने मित्र को दोस्त को खोजते हैं ताकि हम उसकी बुराई की चर्चा कर पाए। औरों की बुराई करने में जो आनंद आता है ना, कई लोगों का पास टाइम है वो। और यहां भगवान शंकर कह रहे हैं, अगर आपको किसी के अंदर कोई जहर नजर आ रहा है, अर्थात कोई बुराइयां नजर आ रही हैं, कोई खराबियां नजर आ रही हैं, कोई त्रुटियां दिख रही हैं, कोई गलतियां दिख रही हैं, उसको आप अपने गले में समेट के रख लो, चाहे आपका गला नीला क्यों नहीं पड़ जाए, उसको उगलना नहीं, बोलना नहीं और अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं कर लेना, अर्थात अपने जीवन में उतार नहीं लेना बुराइयों को। यह भी कहा जाता है त्रिशूल उनके पास था, लेकिन त्रिशूल से पहले ध्यान दीजिएगा, गले में सांप लटके हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, जितने भी ये जीव है, चाहे विषैले हो, सबके अंदर एक ही परमात्मा वास करता है, इसलिए कहा नहीं जाता पशुपतिनाथ, पशुओं के बिना यही है। चाहे अच्छाइयां हो बुराइयां हो, सभी के परमात्मा एक है, गॉड इज वन, द सेम गॉड रिजाइड्स इन एवरीवन, वही परमात्मा सबके अंदर वास करता है। त्रिशूल, तीन शूल हैं। किसी ने कह दिया भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में भगवान शंकर जानते हैं, ऑफकोर्स जानते हैं, वो बताने की बात नहीं है। ये भूत काल, ये वर्तमान काल, ये भविष्य काल, ये हमारे लिए, परमात्मा के लिए नहीं है, भगवान के लिए सब एक ही है। अगर आप विचार करें, ये तीन शूल जो है, देह आत्मा, जीव आत्मा और परमात्मा के लिए है। आपका जन्म हुआ, आपने देह धारण करी, लेकिन आपके देह के भीतर क्या है, जीव आत्मा है। अब आपकी यात्रा कहां होनी चाहिए, परमात्मा तक। तो आपको ये रियलाइज करना है कि मैं देह नहीं हूं, आई एम नॉट दी बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से कुछ ऊपर हूं, कुछ हटकर हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, तो मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं जो जीव आत्मा है, जो शरीर में वास कर रही है। लेकिन जीव आत्मा भी आप नहीं है, कमाल की बात तो यह है, जीव आत्मा नहीं, आप परमात्मा है, जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। हमें अपनी जीव आत्मा को भी परमात्मा में लय में मिला देना है, संलग्न कर देना है, एब्जॉर्ब कर देना है, मर्ज कर देना है, डिसॉल्व कर देना है। ये जीव आत्मा आपके मृत्यु के बाद शरीर से बाहर निकलेगी, फिर और शरीर धारण करेगी। ना जाने कितने जन्मों से यही करते आ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं, इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, वासनाएं रह जाती हैं, फिर दोबारा जन्म होता है। जब जीव आत्मा इस बात को समझ लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं,
ये भी समझ लेती है कि मैं आत्मा भी नहीं हूं. आई एम गॉड नन अदर देन गॉड. सो अहम आई एम दैट. मैं वह हूं. वह क्या है? परमात्मा. ये जो यात्रा है देह आत्मा से परमात्मा तक की, हमको ये यात्रा पूर्ण करनी है. उस समय है अब. विचार कीजिएगा आप. समय है अब. भगवान शंकर के पास भाई एक कटोरा पड़ा हुआ है. अब भाई कुबेर के मित्र हैं जो धन संपत्ति के देवता माने जाते हैं, कटोरा लेके क्यों बैठे हुए हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको? कटोरे का अर्थ है संसारिक धन आपको आध्यात्मिक जीवन में बाधा दे सकता है. कटोरा खाली है ना उनका, भिक्षा पात्र समझ लिया. हम लोग करते क्या हैं? ज्यादातर लोग हम ये प्रयास करते हैं, हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना पैसा है बैंक के अंदर, कितनी प्रॉपर्टीज है, कितने पैसे मिलेंगे इस उम्र में, उस उम्र में काम ने कितना इकट्ठा कर रखा है. हमारा पूरा संपूर्ण जीवन केवल इन्हीं कामों में निकल जाता है. हाय पैसा. एक प्रॉपर्टी ली, दूसरी प्रॉपर्टी ली, तीसरी प्रॉपर्टी ली, पैसे का लालच खत्म नहीं होता. कभी आपने देखा आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, वो कभी ना कभी शांत हो जाएगा. एक महीने बाद, दो महीने बाद शांत हो जाएगा. आपको भूख लगी है, कितना खाना खा लोगे यार? एक रोटी, 10 रोटी, 15 रोटी खा लोगे, पेट भर जाएगा. आपको नींद आई है, कितना सो लोगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे फिर उठ जाओगे आप. सभी की सीमा है, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं है. चाहे आपको सारे संसार की धन संपत्ति क्यों ना प्राप्त हो जाए, तब भी लालच समाप्त नहीं होता है. और ये लालच जो है, ये संसारिक धन संपत्तियां, संसारिक सुख जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा लेके आते हैं. भगवान शंकर ने अपने शरीर में राख अमल रखी है, विभूति. कहते हैं भगवान शंकर ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था. भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे, उनको ध्यान से हटाने के लिए कामदेव ने अपने बाण चलाए. अर्थात कामदेव ने काम की इच्छा भगवान शंकर के मन में जागृत करने की कोशिश की, प्रयास किया. काम क्या है? सेक्सुअल अर्जेस. काम क्या है? इच्छाएं. दोनों को काम बोला जाता है. भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर काम को भस्म कर दिया. वो कहते राख जो है उन्होंने अपने शरीर पे लगा रखी है. कामदेव की राख नहीं है, राख है वैसे तो. मैं दोनों बातों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं. पहली बात, हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर, हमारा काम. अगर आप काम को जलाना चाहते हो, काम वासनाओं को जलाना चाहते हो, आपको बाहर नहीं भीतर देखना है. ये भगवान ने जो आपको दो आंखें दी है ना, ये बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर लेके आती है, ये बाहर देखती है. तीसरा नेत्र दोनों आंखों के बीच में नाक की सीध में ऊपर है, जहां पर कहा जाता है ध्यान लगाओ. ध्यान लगाते थे आपके तीसरी आंख आपके भीतर देखेगी, भीतर इम्पार्शियल इंट्रोस्पेक्शन करेगी, विश्लेषण करेगी, एनालाइज करेगी, अपनी त्रुटियों को देखेगी, अपनी वासनाओं को देखेगी, उनको खींच खींच के, कुरेद कुरेद के बाहर निकालेगी, भस्म करेगी. ये शक्ति आपके भीतर है. यू हैव द पावर, यू हैव द कैपेसिटी. तीसरे नेत का अर्थ है अपने भीतर अपनी वासनाओं को भस्म करना. और जो राख की बात हो रही है वो ये है कि जब आपकी मृत्यु होगी, आपको केवल चाहिए चार कंधे. आजकल तो लोग गाड़ी में ले जाते हैं उठा के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. चार लोग आपके शरीर को उठा के कंधे पर ले जाके शमशान भूमि में जाके भस्म कर देंगे, बचेंगे क्या? क्या बचेगा? मुट्ठी भर राख, उसको भी आप कोई घड़े में मटके में डाल के जाके समुन्द्र में या गंगा में जाके बहा के आ जाएंगे, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी, यात्रा समाप्त हो गई। कितनी मृत्युएं हुई हैं हमारे परिवार में, हमारे मित्रों के बीच में, हमारे समाज में, हमारे जान पहचान लोगों में, लेकिन हमें समझ नहीं आई आज तक, ये बात समझ नहीं आई है। अंत में बचेगा क्या? मुट्ठी पर राख। ये आपको याद दिलाने के लिए कि आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट द माइंड, मैं मन नहीं हूं। ये त्रिशूल वाली यात्रा, देह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, विचार कीजिएगा जरा आप। ये जो राख है, इसलिए भगवान बापा आपको चुटकी विभूति देते रहे हैं, एक रिमाइंडर है। अरे भाई, आप अपने मोबाइल फोन में कितने रिमाइंडर लगा लेते हो यार, आप मुझे उठा देना, अलार्म लगा देते हो, अलर्ट लगा देते हो, आज ये काम करना है, वो काम करना है, आप मुझे मैच देखने जाना है, आप मुझे, मेरी डेट है आदि आदि। लेकिन ये रिमाइंडर क्यों नहीं आया कि मेरा जीवन जब समाप्त होगा, मैं मुट्ठी भर राख रह जाऊंगा, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं क्या लेकर जाऊंगा? अपनी वासनाओं को, अपने कर्मों को, विचार कीजिएगा। और ज्यादातर भगवान शंकर को अकेले दिखाया जाता है, सन्यासी के रूप में शमशान घाट में बैठे हुए हैं, कि डेथ कैन नॉट बी एस्केप्ड। कई बार भगवान शंकर को माता पार्वती के साथ, गणपति जी के साथ, कार्तिक के साथ भी दिखाया जाता है। अब देखिए भगवान शंकर की सवारी क्या है, नंदी बैल, गले में क्या है, सांप। माता पार्वती की सवारी क्या है, शेर। गणपति की सवारी क्या है, चूहा, मूषक। सुब्रमण्यम जी कार्तिक की सवारी क्या, मोर। ऐसा नहीं कि मोर जो है वो सांप को खा जाए, सांप चूहे को खा जाए, शेर मोर को खा जाए, ये बैल को खा जाए। ये सारे अलग अलग प्रवृत्ति के प्राणी हैं, ऑपोजिट नेचर के हैं, लेकिन फिर भी सारे मिलजुल के रहते हैं, दे लिव इन हार्मनी। क्यों भाई? क्योंकि उनके साथ भगवान शंकर है। जब भगवान शंकर आपके साथ है तो यू कैन लिव इन हार्मनी, डजंट मैटर हु इज विद यू। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, अलग अलग नेचर के हैं, बट येट यू कैन लिव इन लव एंड हार्मनी। रुद्र बोला जाता है भगवान शंकर को, रुद्र। रुद्र क्या है, कभी विचार कीजिएगा, रुद्र क्या है? कहते हैं रुद्र का अर्थ होता है जो आपके अंदर एक डर डाल देता हो। 11 प्रकार के रुद्र माने जाते हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। ये अगर आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप भयभीत रहेंगे। तो सबसे पहले आपको भगवान शंकर तक पहुंचने के लिए अपने कर्म इंद्रियां, अपने ज्ञान इंद्रियां, अपने मन को नियंत्रण में करना होगा, उससे ऊपर उठना होगा। फिर आगे दूसरे रुद्रों की बात करेंगे, उनको भी रुद्र कहा गया है। हमें क्या करना चाहिए? समय कम है तो मुझे यहां पर विराम देना होगा। क्या करना चाहिए? हमें शिवोहम का जाप करना चाहिए, शिवरात्रि के समय खासकर शिवोहम शिवोहम। इसी मंत्र को आप बोलते रहिए, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, शिवोहम मैं शंकर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं देवता हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जय शिव।